समाचार सेवा प्रभाग प्रस्तुत करता है कार्यक्रम आज सवेरे।
फिर एक नया दिन, फिर एक नई शुरुआत, फिर अपने अधूरे सपनों को साकार करने की कवायद, और फिर आप और हम एक साथ एक ही प्लेटफॉर्म पर। जी हाँ, FM 100.1 MHz आकाशवाणी गोल्ड पर समाचार सेवा प्रभाग के कार्यक्रम आज सवेरे का ही जिक्र कर रही हूँ मैं। स्वागत है आप सभी का। साथ हूँ आपके मैं नईम अख्तर, और मेरे साथ हैं शगुन चोपड़ा। शगुन, कैसी है आपकी मॉर्निंग?
इट इज रियली गुड एंड रियली अमेजिंग एंड अ वेरी गुड मॉर्निंग टू यू एंड अ वेरी वार्म वेलकम to all our listeners tuned into Akashwani FM Gold on 100.1 MHz and the Akashwani network to our daily news magazine program Aaj Savere. And listeners, stay with us for the next half an hour as we will bring you the latest national and international news. Also, we will provide you Metro City updates as well as some historical information related to today, that is 9th of January. So make sure, listeners, to stick around till the end. We will begin with the headlines first.
Ji. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज भुवनेश्वर के जनता मैदान में 18वें प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन का औपचारिक उद्घाटन करेंगे। श्री मोदी कल शाम भुवनेश्वर पहुंचे। हवाई अड्डे पर प्रधानमंत्री का स्वागत ओडिशा के राज्यपाल हरिबाबू कंभमपति, मुख्यमंत्री मोहन चरण मांझी और केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने किया। 18वें प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन का आयोजन ओडिशा सरकार के सहयोग से भारत सरकार ने 8 से 10 जनवरी तक भुवनेश्वर में किया है। ये सम्मेलन भारतीय मूल के लोगों को एक दूसरे से जुड़ने का एक मंच प्रदान करता है। इस सम्मेलन का विषय है विकसित भारत में प्रवासी भारतीयों का योगदान। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू कल सम्मेलन के समापन कार्यक्रम में शामिल होने के लिए आज शाम भुवनेश्वर पहुंचेंगी। राष्ट्रपति विभिन्न क्षेत्रों में प्रवासी भारतीयों को उनकी उपलब्धियों के लिए प्रवासी भारतीय सम्मान भी प्रदान करेंगी। आकाशवाणी दिल्ली आज प्रवासी भारतीय दिवस के उद्घाटन कार्यक्रम पर ऑफ ट्यूब कमेंट्री प्रसारित करेगा। श्रोता इसे सुबह 9:55 पर इंद्रप्रस्थ FM गोल्ड और आकाशवाणी लाइव न्यूज 24/7 पर सुन सकते हैं। इस कार्यक्रम को आकाशवाणी के यूट्यूब चैनल आकाशवाणी AIR पर भी प्रसारित किया जाएगा।
Foreign Secretary Vikram Misri and Acting Foreign Minister of Afghanistan Maulavi Amir Khan Muttaqi discussed various issues pertaining to bilateral relations as well as regional developments in Dubai yesterday. External Affairs Ministry said in a statement that in the meeting, Foreign Secretary underlined India's historic friendship with the Afghan people and the strong people-to-people contacts between the two countries. He conveyed India's readiness to respond to the urgent developmental needs of the Afghan people. The two sides evaluated the ongoing Indian humanitarian assistance programs. The Afghan minister appreciated and thanked the Indian leadership for continuing to engage and support the people of Afghanistan. In view of the current need for development activities, it was decided that India would consider engaging in development projects in the near future, in addition to the ongoing humanitarian assistance program. The statement said that in response to the needs of the Afghan people, India decided to extend humanitarian assistance to Afghanistan. India has so far dispatched several shipments consisting of 50,000 metric tons of wheat, 300 tons of medicines, 27 tons of earthquake relief aid, 40,000 liters of pesticides, 100 million polio doses, 1.5 million doses of COVID vaccine, 11,000 units of hygiene kits for the drug de-addiction program, 500 units of winter clothing and 1.2 tons of stationery kits. In response to the request from the Afghan side, India will provide further material support in the first instance to the health sector and for the rehabilitation of refugees. The two sides also discussed strengthening of sports cooperation, which is highly valued by the young generation of Afghanistan. It was also agreed to promote the use of Chabahar port for supporting trade and commercial activities, including for the purpose of humanitarian assistance for Afghanistan.
भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो ने स्पेडिक्स मिशन के अंतर्गत पृथ्वी की निचली कक्षा में घूम रहे अपने दो उपग्रहों के डॉकिंग परीक्षण को एक बार फिर स्थगित कर दिया है। अंतरिक्ष एजेंसी ने अपने ट्वीट में कहा कि दो उपग्रहों के बीच अत्यधिक विचलन होने पर डॉकिंग को स्थगित करने का निर्णय लिया गया।
President Draupadi Murmu will be on a visit to Meghalaya and Odisha beginning today. President will grace the Golden Jubilee celebrations of the ICAR Research Complex, for the northeastern hill region at Umiam in Meghalaya. Tomorrow, President Murmu will grace the valedictory session of the Pravasi Bhartiya Divas Convention and present the Pravasi Bhartiya Samman Awards at Bhuvaneshwar.
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आंध्र प्रदेश के तिरुपति में हुई भगदड़ पर दुख जताया है. एक सोशल मीडिया पोस्ट में प्रधानमंत्री ने कहा कि उनकी संवेदनाएं उन लोगों के साथ हैं जिन्होंने इस दुर्घटना में अपने प्रियजनों को खोया है. श्री मोदी ने घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की प्रार्थना की. उन्होंने कहा कि राज्य सरकार प्रभावित लोगों को हर संभव सहायता प्रदान कर रही है.
Information and Broadcasting Minister Ashwini Vaishnav has launched a pair of special songs by Akashwani and Doordarshan. Dedicated to the Mahakumbh in Delhi, the special composition by Akashwani encapsulates the spiritual, cultural and religious significance of the Mahakumbh through a harmonious blend of music and lyrical presentation. The song has been sung by Ratan Prasanna with the music of Santosh Nahar and Ratan Prasanna.
Jai Mahakumbh, Jai Mahakumbh. जय महाकुंभ जय महाकुंभ पग पग जयकारा महाकुंभ तन कुंभ कुंभ मन कुंभ कुंभ जीवन सारा अब कुंभ कुंभ
This melodious tribute by Akashwani honors the timeless traditions and sanctity of the Mahakumbh, fostering a sense of devotion and pride among its listeners. The theme song Mahakumbh Hai, produced by Doordarshan, is sung by Padmashree Kailash Kher. The song encapsulates the spirit of devotion, celebration and the vibrant cultural essence of the Mahakumbh. Prasar Bharati Chairman Navneet Kumar Sehgal, Prasar Bharati CEO Gaurav Dwivedi, Director General of Doordarshan Kanchan Prasad, and Director General of Akashwani Dr. Pragya Paliwal Gaur were also present on the occasion. Mahakumbh 2025 is being held from 13th January to 26th February at Prayagraj.
पूरे उत्तर भारत में शीत लहर का प्रकोप जारी है. मौसम विभाग ने अगले 3 से 4 दिन के दौरान पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, बिहार, हिमाचल प्रदेश और झारखंड के कई हिस्सों में सुबह और रात के समय कोहरा छाए रहने की संभावना जताई है. घने कोहरे के कारण देश के उत्तरी क्षेत्र में कई ट्रेनों और उड़ानों की आवाजाही प्रभावित हुई है. दिल्ली आने वाली करीब 25 ट्रेनें 5 से 6 घंटे तक की देरी से चल रही हैं.
In Hockey India League, Dutch drag flicker Jeppe Jansen scored a brilliant hat-trick to help the Tamil Nadu Dragons secure a 6-5 win over Team Go Nasika at the Birsa Munda Hockey Stadium in Rourkela last night. The result takes the Tamil Nadu Dragons to the second spot on the standings with 9 points in 4 matches. We have more from our correspondent.
Hyderabad Tufan secured a crucial 3-0 win over UP Rudras.
Goal hai! Kamal hai! Kamal hai! Shilanand Lakhda! 3-0 se aage Hyderabad Tufan.
Jeppe Jansen scored a memorable hat-trick as Tamil Nadu Dragons edged past Team Go Nasika with 6-5 in an 11-goal thriller in Hockey India League on Wednesday.
11th goal match ka! 6-5 se lead mein Tamil Nadu Dragons!
Jeppe Jansen from Tamil Nadu Dragons and Dominic Dixon from Hyderabad Tufans became player of the match. Vedanta Kalinga Lancers will face Team Go Nasika today at 8:15 PM. You can listen to daily report on Hockey India League on Akashwani. This is Pratishtha Jain for Akashwani News.
और अब शगुन प्रमुख महानगरों से जुड़ी कुछ प्रमुख खबरें जिसमें आपको मैं कहूंगी कि आप ही शुरुआत कीजिए.
बिल्कुल एब्सोल्युटली एंड वी विल बिगिन नेम विद चेन्नई.
जी
द ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स मदुरई सेलिब्रेटेड द 78th फाउंडेशन डे एट तिरुनेलवेली. द इवेंट ब्रॉट टुगेदर 1300 स्टूडेंट्स 80 टीचर्स 200 पेरेंट्स एंड BIS ऑफिशियल्स टू रेज अवेयरनेस अबाउट प्रोडक्ट क्वालिटी सर्टिफिकेशन and the role of importance of quality and standardization in consumer goods used in day-to-day life. The event featured 10 stalls displaying BIS-certified products and a science exhibition showcasing innovative science models by students. Students participated in competitions like quiz, poster designing, engaging in fun activities while learning about the importance of quality standards. The Joint Director of BIS gave a presentation on quality of consumer goods and demonstrated the use of BIS Care app, explaining its latest features. A quality pledge was taken by 1,580 participants in the program to choose and use quality goods. Staying with Chennai, the Greater Chennai Corporation will be revamping at least 15 burial grounds in the city. They will be provided with electric or gasified crematoriums, along with improvements such as new toilets and water supply facilities. Existing pyres will be demolished and reconstructed, and a gasified crematorium will be added. At important areas, the civic body will be adding high-mast lights for more visibility and refurbish sanitation facilities. The Commissioner, J. Kumara Gurubaran, said that gates with security guards and infrastructure needed for them will be provided. He also said that around 9 crore rupees has been allotted to hire employees for the purpose. Simultaneously, clean-up drives have been undertaken at 200 burial grounds and crematoriums in the city. In the past few days, a total of 159 tons of waste, including 93 tons of garbage and 65 tons of construction debris, was removed from the burial grounds. Now, Naeem, which metro city update are you going to give our listeners?
Delhi.
Ji.
आयकर विभाग ने दिल्ली विधानसभा चुनाव को स्वच्छ और निष्पक्ष बनाने के लिए बेहिसाब नकदी, सोना और अन्य कीमती वस्तुओं की आवाजाही पर निगरानी रखने के लिए नियंत्रण कक्ष स्थापित किया है। आयकर निदेशालय जांच दिल्ली ने सिविक सेंटर नई दिल्ली में 24 घंटे और सातों दिन काम करने वाला नियंत्रण कक्ष खोला है। विभाग ने एक टोल फ्री नंबर 1800111309 भी जारी किया है, जिस पर कोई भी व्यक्ति राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के भीतर नकदी, सोना और कीमती धातुओं की संदिग्ध आवाजाही या वितरण के बारे में जानकारी दे सकता है। नियंत्रण कक्ष में कॉल करने वालों को कोई भी व्यक्तिगत विवरण जैसे नाम या पहचान का कोई अन्य विवरण बताने की आवश्यकता नहीं है। दिल्ली में आदर्श आचार संहिता लागू होने के कारण पूरी अवधि के दौरान नियंत्रण कक्ष सुचारू रूप से कार्य करेगा। और दिल्ली से एक और खबर यह है कि राजधानी के भारत मंडप में चल रहे 6 दिवसीय ग्रामीण भारत महोत्सव अंतिम चरण में है। ग्रामीण भारत की उद्यमशीलता की भावना और सांस्कृतिक विरासत का जश्न मनाने के लिए इस महोत्सव का आयोजन किया जा रहा है। इस महोत्सव में देश भर के 300 से अधिक शिल्पकार और कारीगर अपने उत्पादों का प्रदर्शन कर रहे हैं। इनमें घर सज्जा, पोशाक, खान पान की सामग्री और GI उत्पाद शामिल हैं, जिन्हें बड़ी संख्या में लोग पसंद कर रहे हैं। इस महोत्सव का विषय विकसित भारत 2047 के लिए एक प्रतिस्पंदी ग्रामीण भारत का निर्माण करना है। महोत्सव का उद्देश्य विभिन्न चर्चाओं और कार्यशालाओं के माध्यम से ग्रामीण बुनियादी ढांचे को बढ़ाना, आत्मनिर्भर अर्थव्यवस्था बनाना और ग्रामीण समुदायों के बीच नवाचार को बढ़ावा देना भी है। और अब आपकी बारी।
जी, लेट्स फोकस ऑन बेंगलुरु नाउ नेम।
जी,
इंटरनेशनल क्रिकेटर ऑफ यस्टरडे पद्मश्री सैयद किरमानी इनॉग्रेटेड द डायमंड जुबिली स्पोर्ट्स मीट ऑफ बेंगलुरु वाटर बोर्ड इन द सिटी यस्टरडे। The legendary wicketkeeper said that honesty and discipline in life bring success naturally. Speaking about the importance of sports, he noted that sportsmanship and health go hand in hand, and good health forms the foundation for a life full of happiness. He added that at least 50 minutes of physical activities every day will ensure good health. Advising youngsters to abstain from negative feelings and actions, he underscored the need to encourage good habits and positive outlook. He felt that talented athletes need to be encouraged and supported by society. The Diamond Jubilee Sports Meet of Bengaluru Water Board will be held for 3 days, with competitions to be held in cricket, volleyball, throwball, shuttle, badminton and athletics. Now over to you, Naeem.
Ji, Mumbai hai mere paas. Mumbai mein नव पुनर्निर्मित डॉक्टर भाऊ दाजी लाड संग्रहालय, जिसे महाराष्ट्र का सबसे पुराना और देश का तीसरा सबसे पुराना संग्रहालय माना जाता है, उसका कल बुधवार को उद्घाटन किया गया। संग्रहालय 4 साल तक बंद रहा था, पहले कोविड-19 महामारी के कारण और बाद में जीर्णोद्धार कार्य के लिए। मध्य मुंबई में जीजा माता उद्यान के परिसर में स्थित पुनर्निर्मित संग्रहालय का उद्घाटन करने वाले मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि इस तरह के संग्रहालय बनाने का प्राथमिक लक्ष्य ऐतिहासिक विरासत को भावी पीढ़ियों के लिए संरक्षित करना है। उन्होंने कहा कि ये संग्रहालय पर्यटकों के लिए एक प्रमुख आकर्षण का केंद्र होगा और आगंतुकों को अपनी दुर्लभ वस्तुओं और तस्वीरों के माध्यम से एक अनूठा अनुभव प्रदान करेगा। मुंबई नगर आयुक्त भूषण गगरानी ने कहा कि भाऊ दाजी लाड संग्रहालय भवन रूस के सेंट पीटर्सबर्ग में स्टेट हर्मिटेज संग्रहालय की एक छोटी प्रतिकृति है। और मुंबई से एक और इम्पोर्टेंट खबर यह है कि मुंबई विश्वविद्यालय और अमेरिका के प्रसिद्ध सेंट लुई विश्वविद्यालय के बीच हुए समझौते के अनुसार अब छात्रों को मुंबई विश्वविद्यालय में केमिकल साइंसेज में संयुक्त डिग्री मिलेगी। एमएस डेटा एनालिटिक्स और एमएस साइबर दो पाठ्यक्रमों में संयुक्त डिग्री के लिए छात्रों की उत्साहजनक प्रतिक्रिया के बाद सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए विश्वविद्यालय ने अब रसायन विज्ञान में एमएस की संयुक्त डिग्री के लिए पहल की है। हाल ही में मुंबई में यूएएस वाणिज्य दूतावास में मुंबई विश्वविद्यालय और सेंट लुई विश्वविद्यालय के बीच एक शैक्षणिक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए थे। शैक्षणिक वर्ष 2025-26 से रसायन विज्ञान में एमएस संयुक्त डिग्री कार्यक्रम मुंबई विश्वविद्यालय में पेश किया जा रहा है। इसके साथ ही छात्र ऑन जॉब ट्रेनिंग और इंटर्नशिप भी कर सकेंगे। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालयों की ये संयुक्त डिग्री छात्रों की अकादमिक उत्कृष्टता में योगदान देगी।
Now turning our attention to Hyderabad.
जी.
Telangana Chief Minister Revanth Reddy and Union Ministers from the state have condoled the stampede in Tirupati, which claimed 6 lives and injured many. Mr. Reddy expressed deep shock over the incident and extended his condolences to the bereaved families. He urged the Andhra Pradesh government to ensure that injured receive the best medical care and also prayed for their speedy recovery. In a statement, he said that he was deeply saddened by the stampede in Tirupati, resulting in the loss of lives. Union Minister of State for Home Bandi Sanjay Kumar and BRS leader K. Tarak Rama Rao have conveyed their heartfelt condolences to the bereaved families. They requested the Andhra Pradesh government to ensure that the injured receive the best medical care. Also staying with Hyderabad, the Telangana state government has announced plans to enhance women's empowerment by setting up solar power plants through self-help groups aiming to generate 1,000 megawatt of electricity. Each megawatt of solar power requires 4 acres of land and approximately 4,000 acres needs to be identified for the same. Addressing district collectors through video conference, Deputy Chief Minister Vikram Arka has emphasized that women's financial independence is key to their growth. He directed district collectors to identify temple and irrigation lands, including the government lands for this. And B. Vikram Arka also said forest lands are potential locations for setting up solar plants, provided there are no disruptions to local communities or ecosystems. Naeem, we have one more update from Hyderabad now.
Yes.
Former Special Chief Secretary in Municipal Administration and Urban Development and Senior IAS Officer Arvind Kumar has appeared before the Anti-Corruption Bureau at its office in Hyderabad. This was following the ACB summoning him for questioning in connection with alleged financial irregularities during the Formula E race held in Hyderabad in 2023. Meanwhile, BLN Reddy appeared before the Enforcement Directorate in connection with the case registered by the agency on the same issue. The ED is conducting the probe under the Prevention of Money Laundering Act PMLA based on the FIR filed by the ACB. The central agency is looking into possible violations of the Foreign Exchange Management Act. Arvind Kumar is to appear before the central agency today. Over to you, Naeem.
जी, कोलकाता से एक खबर है। गंगा सागर मेले के अवसर पर पूर्वी रेलवे विशेष रेलगाड़ियां चलाएगा। मंडल रेल प्रबंधक DRM सियालदह दीपक निगम ने बताया कि विशेष रेलगाड़ियां आज से चलाई जाएंगी। 12 जनवरी से फेरे बढ़ाए जाएंगे। ये व्यवस्था 17 जनवरी तक जारी रहेगी। रेलवे नामखाना, काकद्वीप, प्रिंसिप घाट और अन्य स्टेशनों पर पेयजल की व्यवस्था करेगा और सुरक्षा व्यवस्था कड़ी रहेगी। और अब प्रमुख महानगरों की खबरों के बाद प्रमुख महानगरों का मौसम। दिल्ली और आसपास के क्षेत्रों में सुबह के समय घना कोहरा छाया रहेगा। अधिकतम तापमान 21 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 5 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहने का अनुमान है। मुंबई में भी सुबह के समय कोहरा और धुंध तथा बाद में आंशिक बादल छाए रहने का अनुमान है। न्यूनतम तापमान 21 डिग्री सेल्सियस और अधिकतम तापमान 33 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है। कोलकाता में मौसम साफ रहने का अनुमान है। न्यूनतम तापमान 12 डिग्री सेल्सियस और अधिकतम 33 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है।
Chennai is expected to have fog or mist in the morning and partly cloudy sky later. The minimum temperature was 22 degrees Celsius and maximum will be around 30 degrees. Bengaluru is expected to have mist. The minimum temperature was 15 degrees Celsius and maximum will be around 28 degrees. Now talking about Hyderabad, it is expected to have partly cloudy sky with haze. The temperature will hover between a minimum of 16 degrees एंड अ मैक्सिमम ऑफ 30 डिग्री सेल्सियस।
और अब 9 जनवरी के इतिहास पर नजर डाल लेते हैं। 1431 ईस्वी में फ्रांस में जोन ऑफ आर्क के विरुद्ध मुकदमे की शुरुआत हुई थी आज ही के दिन।
In the year 1768, British equestrian Philip Astley staged the world's first modern circus in London.
1792 में रूस और तुर्की ने शांति समझौते पर हस्ताक्षर किए थे। 1816 में सर हम्फ्री डेवी ने खदान कर्मियों के लिए पहले डेवी लैंप का परीक्षण किया था।
In the year 1839, the world's first commercial photography, the daguerreotype, was proclaimed by Louis-Jacques Mondet Daguerre of France. In the year 1915, Mahatma Gandhi returned to Mumbai from South Africa. That is marked as Pravasi Bhartiya Divas or NRI Day, when we celebrate the achievements of the Indian community overseas.
1923 में जॉन डी लास सियेरवा ने पहली ऑटोगायरो फ्लाइट का निर्माण किया था। 1982 में पहला भारतीय वैज्ञानिक दल अंटार्कटिका पहुंचा था।
In the year 1984, American hard rock band Van Halen released its most successful album, 1984. This was the name of the album.
Ji.
In the year 1998, Russia's chess legend Anatoly Karpov defeated India's Vishwanath Anand to retain his chess title.
2007 में जापान में पहला राज्य मंत्रालय गठित हुआ और 2012 में लियोनेल मेसी ने लगातार दूसरे साल फीफा का बैलोन डी और सर्वश्रेष्ठ फुटबॉलर का पुरस्कार जीता।
गोइंग अ लिटिल बैक, इन द ईयर 2001, अमेरिकन पॉप सिंगर माइकल जैक्सन रिसीव द आर्टिस्ट ऑफ द सेंचुरी अवार्ड एट द 29th अमेरिकन म्यूजिक अवार्ड्स। एंड इन द सेम ईयर एप्पल इंट्रोड्यूस इट्स आइकॉनिक डिजिटल मीडिया प्लेयर एप्लीकेशन iTunes।
जी, और अब आ गए हम अपने अंतिम चरण में जिसमें हम बात कर रहे हैं कुछ ऐसी हस्तियों की जिनकी आज पुण्यतिथि जयंती या जन्मदिन है। सबसे पहले जिक्र कर रहे हैं उस्ताद राशिद खां का। उस्ताद राशिद खां जिनकी आज पुण्यतिथि है, भारतीय शास्त्रीय संगीत के प्रसिद्ध गायक और संगीतकार थे। वो रामपुर सहसवान घराने से थे। उनके सुर जब छिड़ते थे तो हर कोई मंत्रमुग्ध हो जाता था। संगीत की साधना वो कुछ यूं करते थे कि सुनने वाले अपने सुध-बुध खो देते थे। वैसे तो उस्ताद राशिद खां को हिंदुस्तानी संगीत में ख्याल गायकी के लिए जाना जाता था, लेकिन ठुमरी भजन और तराना में भी उनका कोई जवाब नहीं था। 2006 में उन्हें भारत सरकार ने पद्मश्री से सम्मानित किया था और इसी साल संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार देकर भी उन्हें नवाजा गया था।
Now let's talk about Catherine Mansfield, writer and critic who was an important figure in the modernist movement. English master of the short story, she evolved a distinctive prose style with many overtones of poetry. Her delicate stories focused upon psychological conflicts. She in turn had much influence on the development of the short story, which is a form of a literature.
जी, आज ही पुण्यतिथि है कमर जलालाबादी की। हिंदी फिल्मों के प्रसिद्ध गीतकार और शायर थे। ये चार दशक तक हिंदी फिल्मी जगत को बतौर गीतकार एक से बढ़कर एक गीत देते रहे। कमर जलालाबादी ने अपने लंबे करियर में हिंदी सिनेमा के लगभग सभी प्रसिद्ध संगीतकारों के साथ काम किया। एक गीतकार के रूप में कमर जलालाबादी ने बहुत से न भूलने वाले गीत हिंदी सिनेमा को दिए। यूं तो उन्होंने फिल्म की कहानी की मांग के अनुसार हर तरह के गीत लिखे, परंतु उनके द्वारा रचे गए वियोग वाले प्रेम गीत अपना एक अलग ही स्थान रखते हैं। अगर दूसरी तरफ बात करें तो हावड़ा ब्रिज का मस्ती भरा गीत मेरा नाम चिन चिंचू उनकी लेखनी का एक अलग ही पहलू पेश करते हैं। और 1954 में बनी फिल्म पहली तारीख के लिए कमर जलालाबादी ने एक ऐसा गीत लिखा था जो दशकों तक हर महीने की पहली तारीख को रेडियो पर बजाया जाता रहा है। तो अभी सुनते हैं उस गीत को भी।
दिल ले गया, मोटी मोटी अखियों में आंसू दे गया।
मेरा नाम चिन चिंचू, चिन चिंचू बाबा चिन चिंचू, रात चांदनी में और तू हेलो मिस्टर हाउ डू यू डू।
दिन है सुहाना, आज पहली तारीख है, खुश है जमाना, आज पहली तारीख है, पहली तारीख यदि पहली तारीख है।
Now let's talk about musician Jimmy Page, guitarist and founder of the rock band Led Zeppelin. At the age of 12, he took a few lessons and also picked up some basic chords from the only other guitarist at his school and then taught himself. So he was a self-taught guitarist and a lot of music by listening to records. No books, just his ears. He also had influences such as James Burton and Scotty Moore, who played for Elvis Presley. And listeners, for you, we are playing this one of the greatest rock songs of all time, Stairway to Heaven by him.
There's a lady who's sure all it glitters is gold, and she's buying the stairway.
Well, no doubt, fabulous guitar playing by Jimmy Page.
और आज ही पुण्यतिथि है सर छोटू राम की. लाहौर भारत के स्वाधीनता सेनानी और राजनेता थे. गरीबों के बंधु के रूप में वो रहबरे आजम कहे जाते थे. सर चौधरी छोटू राम शारीरिक रूप से छोटे कद के व्यक्ति थे, लेकिन उनके व्यक्तित्व का कद बहुत बड़ा था. दीन दुखियों और गरीबों के बंधु, अंग्रेजी हुकूमत के लिए सर तो किसानों के लिए मसीहा थे. चौधरी छोटू राम का वास्तविक नाम राय रिछपाल था, लेकिन परिवार में सभी उन्हें प्यार से छोटू कहकर पुकारते थे. फिर स्कूल के रजिस्टर में भी जाने अनजाने उनका नाम छोटू राम ही दर्ज कर लिया गया, और यहीं से राय रिछपाल का वास्तविक नाम छोटू राम हो गया और उन्होंने देश के इतिहास में अपना अमर नाम लिख दिया.
टुडे वी आर आल्सो रिमेम्बरिंग सीपी रामानुजम, द मैन हु मेड मैजिक विद मैथ्स. दोज हु न्यू हिम से हिज पैशन फॉर मैथमेटिक्स वाज इन्फेक्शियस इन द वर्ल्ड ऑफ मैथमेटिक्स, इन द वर्ड्स ऑफ मैथमेटिशियन रादर डेविड मम्फोर्ड, एंड आई एम क्वोटिंग, ही लव्ड मैथमेटिक्स एंड ही वाज ऑलवेज रेडी टू टेक अप अ न्यू थ्रेड और पर्स्यू एन ओल्ड वन विद इन्फेक्शियस एंथुसियाज्म. He was equally ready to discuss a problem with a first-year student or a colleague, to work through an elementary point or puzzle over a deep problem. He worked in the fields of number theory and algebraic geometry. He was elected a fellow of the Indian Academy of Sciences in the year 1973.
ऐसे ही एक और बहुत बड़ा नाम है हरगोबिंद खुराना का, जो भारत में जन्मे अमरीकी जैव रसायन शास्त्री थे. 1968 में शरीर विज्ञान या चिकित्सा के क्षेत्र में मार्शल डब्ल्यू नीरेनबर्ग और रॉबर्ट डब्ल्यू हॉली के साथ उस अनुसंधान के लिए उन्हें नोबेल पुरस्कार मिला था. इस अनुसंधान से पता लगाने में मदद मिली कि कोशिका के आनुवांशिक कोड को ले जाने वाले न्यूक्लिक एसिड न्यूक्लियोटाइड्स कैसे कोशिका के प्रोटीन संश्लेषण सिंथेसिस को नियंत्रित करते हैं. और स्विट्जरलैंड में उन्होंने स्विस फेडरल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी और ब्रिटिश कोलंबिया कनाडा और विस्कॉन्सिन अमेरिका में फेलो और प्राध्यापकों के पद पर भी काम किया.
नाउ लेट्स टॉक अबाउट जोन बेज. शी इज अ सिंगर सॉन्ग राइटर एंड म्यूजिशियन. शी लर्न सून लर्न टू अकंपनी हर क्लियर सोप्रानो वॉइस व्हिच इज अ वेरी हाई पिच वॉइस ऑन द गिटार. टू ऑफ द सॉन्ग्स विद व्हिच शी इज मोस्ट आइडेंटिफाइड आर कवर ऑफ द बैंड्स द नाइट दे ड्रोव ओल्ड डिक्सी डाउन एंड हर ओन डायमंड्स एंड रस्ट, which she recorded on acclaimed album of the same name. And for you listeners, we have this particular song, Diamonds and Rust.
And here I sit, and on the telephone, hearing a voice I'd known a couple of light years ago, heading straight for a fall.
आज जयंती है वृंदावन लाल वर्मा की, जो ऐतिहासिक उपन्यासकार और निबंधकार थे. इनका जन्म मऊरानीपुर झांसी उत्तर प्रदेश में हुआ था. प्रारंभिक शिक्षा इन्होंने भिन्न भिन्न स्थानों पर प्राप्त की. बीए करने के बाद इन्होंने कानून की परीक्षा प्राप्त की और झांसी में वकालत करने लगे. अपनी साहित्यिक सेवाओं के लिए वृंदावन लाल वर्मा को आगरा विश्वविद्यालय द्वारा डीलिट की उपाधि से सम्मानित किया गया और अनेक रचनाओं को केंद्रीय और प्रांतीय राज्यों ने पुरस्कृत किया था. और आज ही जयंती है महेंद्र कपूर की. महेंद्र कपूर एक ऐसे गायक जिनको गाए हुए गीत आज भी लोगों के जहन में है. अपने गीतों से कई पीढ़ियों को सम्मोहित करने वाले बहुमुखी प्रतिभा के धनी महेंद्र कपूर हिंदी फिल्म संगीत के स्वर्णकाल की प्रमुख हस्तियों में से एक थे. और जब भी देशभक्ति गीतों का जिक्र होता है तो सबसे पहला नाम उन्हीं का आता है. देशभक्ति गीतों का पर्याय बन गए महेंद्र कपूर ने. अपने 4 दशक के फिल्मी सफर में लगभग 25,000 गीत गाए. उनकी प्रतिभा सिर्फ हिंदी तक सीमित नहीं थी, पंजाबी, मराठी, भोजपुरी और आदि क्षेत्रीय भाषाओं में भी उन्होंने बहुत से गीत गाए और राष्ट्रीय पुरस्कार और पद्मश्री समेत उनको बहुत सारे पुरस्कार मिले.
किसी पत्थर की मूरत से मोहब्बत का इरादा है, परस्तिश की तमन्ना है.
और वक्त है अब अपने श्रोताओं से विदा लेने का, तो अनुमति दीजिए नईम अख्तर और शगुन चोपड़ा को कार्यक्रम आज सवेरे यहीं समाप्त करने के। लेकिन आप सुनते रहिए आकाशवाणी गोल्ड FM 100.1 MHz पर।
थैंक यू सो मच लिसनर्स फॉर ट्यूनिंग इन।
नमस्कार।